मेरा नाम नंदलाल मास्टर है और मैं मेहदीगंज नागेपुर का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे मेरी एक छोटा सा जनसंगठन है जिसका नाम लोक समिति है, जो कि इस पूरे इलाके में बुनकरों के समुदायों के साथ मिलकर के हम उनके शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के हम लोग 94 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब स्थानीय समुदायों के साथ हम लोग अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे थे, उसी बीच में 2002-03 में जो है हम लोग मेहदीगंज गांव में पहुँचे, और हम लोग पहुँचे तो पूरा जो किसान थे काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उस समय जो है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी कोका कोला, जिसके कारण जो है कि लोग बहुत परेशान थे। उनका जो पोली द्वातक था, जो स्लज था, वो किसानों की ज़मीन में जा रहा था और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा था, और इस कारण से जो है कि लोग उसको बंद करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने हम लोगों से भी सपोर्ट मांगा कि आप लोक समिति एक अच्छा ग्रुप है जो इस आइए इस आंदोलन में शामिल होइए और जो हम लोगों की ज़मीन है उसकी रक्षा करिए। तो हम लोगों को भी लगा कि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, हम लोगों को इसको पता करना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की समस्याएं हैं, कंपनी से क्या क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह की कंपनी है। हम लोगों को भी बहुत बेसिक जानकारी इसके बारे में नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया, एक स्टडी किया। तो जो मूल जानकारी निकल करके आया कि अमेरिका की यह कंपनी जो कि 200 देशों में व्यापार करती है, वो जो है कि इस गांव में 99 में आई। इसके पहले जो है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक भारत की कंपनी थी पार्ले की, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाती थी। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के किसानों से ज़मीन खरीदा, और उसके बाद पूरे नेशनल लेवल पर उस पूरी कंपनी को जो है कोका कोला में मर्ज कर दिया। तो 99 में जो है कि कोका कोला ने फिर इस ज़मीन को खरीदा, पार्ले से खरीदा। तो जब किसानों की ज़मीन से किसानों से उन्होंने ज़मीन खरीदा, तो किसी को नहीं मालूम था कौन खरीद रहा है, कौन लिया है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जब इनका प्लांट लगना शुरू हुआ, जब ये बाउंड्री वाल शुरू हुआ, तो पहला समस्या जो है ज़मीन को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो ज़मीन खरीदा है किसानों के छोटे छोटे टुकड़ों को खरीदा है, करीब 6 एकड़ इन्होंने किसानों से ज़मीन खरीदा, उसमें बीच में ये कम्युनिटी लैंड रास्ता था जो कि पीछे के गांव वालों को जाने के लिए था। तो जब इन्होंने बाउंड्री वाल कोका कोला ने शुरू किया, तो वहाँ पर जो है कि गांव वालों ने विरोध किया कि भाई हमें पीछे जाने के लिए रास्ता तो है नहीं, तो फिर हम कैसे जो है कि जाएंगे, तो हमारा रास्ता छोड़ करके आप जो है कि ये अपना बाउंड्री वाल करिए। तो कोका कोला ने कहा कि नहीं, हम तो पूरा ये खरीदे हैं, हम दो पार्ट में अपना प्लांट तो लगाएंगे नहीं, हमारे लिए कंपल्सरी है। तो उन्होंने जो है किसानों के साथ मतलब किसानों की बात नहीं मानी, लेकिन जो मेहदीगंज की ग्राम पंचायत है, पंचायत कमेटी ने जो है कि कोर्ट में चले गए और उन्होंने एक स्टे ले लिया कि नहीं, ये हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। तो पूरा कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो पूरा रुक गया। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने कंप्रोमाइज़ करना शुरू किया। तो फिर पंचायत के सदस्यों को घूस देने से लेकर के जो उस समय स्टेट की गवर्नमेंट थी, उन सभी के साथ एक प्लान बनाया कि भाई वो किसी भी तरीके से मेरी बाउंड्री वाल घूस दे देती। तो फिर रास्ता यह निकाला गया कि गाँव के लोगों के साथ इन्होंने एक पंचायत किया, एक एग्रीमेंट किया, और उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि हम किस तरह का प्लान करना चाहते हैं, हम यहाँ क्या बनाएंगे, हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन क्या है। तो पहले तो गांव वालों को कोई पता ही नहीं था कंपनी के बारे में, लेकिन जब इनको पता चला गांव वालों को कि नहीं, ये एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे गाँव में आ रही है जो कि काफी बड़ी इसका नाम है और काफी बड़ा रोजगार यहाँ पे देगा, तो गांव वालों को एक बहुत अच्छा फील हुआ कि चलिए कम से कम एक ऐसी कंपनी आ रही है हमारे गांव में जो कि हमें रोजगार भी देगी, पूरे एरिया का विकास भी करेगी। तो उस तरकियों के आधार पर जो है कि गांव वालों ने जो है कोका कोला के साथ वो जमीन देने को राजी हो गए, तो एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट यह हुआ कि ठीक है आप बाउंड्री वाल होने दीजिए, जो उसमें ग्राम सभा की जो 13 बिस्सा करीब 15,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है वो उस जमीन को जो है कि हम आपको एक तरफ दे देंगे और जो बाकी रास्ते उसको हम कब्जा कर लेंगे। तो गांव वाले एग्री हो गए कि ठीक है हमको जमीन चाहिए, आप अपना एक कोने में हमको दे दो, बाकी आप अपनी बाउंड्री वाल की। अब मजे की बात यह देखिए कि जब उन्होंने बाउंड्री वाल शुरू करना शुरू किया तो जो जमीन एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कहा था कि ये जमीन हम छोड़ देंगे, उस जमीन को उन्होंने नहीं छोड़ा, उस जमीन को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और गांव पंचायत मेहदीगंज के जो सरपंच थे उनसे उन्होंने लिखवा लिया कि आप लिख करके दे दो कि वो जमीन ग्राम सभा को मिल गया है। उन्होंने लिख करके दे दिया, वो लोग बताते हैं गांव वाले कि काफी पैसा लेकर के उन्होंने लिख करके दिया। गांव वालों ने फिर इसके अगेंस्ट में जो है कि SDM के यहाँ गए, उस समय के SDM सौरव ग्राम मिश्रा थे, उन्होंने एक आर्डर किया कि तुरंत पुलिस फोर्स के साथ जाकर के कोका कोला के बाउंड्री वाल को तोड़ दिया जाए और जो जमीन ग्राम सभा को की है उस जमीन को खाली कराया जाए। कोका कोला ने उस SDM का ट्रांसफर करवा दिया, तुरंत ट्रांसफर करवा दिया और वही जो सरपंच ने लिखा था कि इस जमीन को हमें मिल गया वही जो है लेटर फाइट करके उस पूरे केस को ही जो है कि ख़त्म कर दिया, वहाँ पे मतलब दबा दिया पूरी तरीके से। और आज तक उस ग्राम सभा की जमीन को जो है कि इन्होंने छोड़ा नहीं। बाद में फिर गांव वाले निराश हो गए, वो सब बैठ गए। जब हम लोग इसमें इन्वॉल्व हुए तो एक एक करके जब हम लोगों ने इनका रिकॉर्ड निकाला और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया लखनऊ में। लखनऊ में जो उस समय UP की जो गवर्नमेंट थी उसके जो राजस्व मंत्री थे अंबिका चौधरी जी, वो खुद जो है कि उस धरने में आए। उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ों पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन चूंकि राजस्व का मामला मेरे से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन का मामला, तो हम इस पर ज़रूर एक इंक्वायरी बैठाएंगे। एक इंक्वायरी कमेटी उन्होंने बैठाया, जो DM थे उनको उन्होंने धर्म सिंह उनको जांच सौंपा कि आप इसकी इंक्वायरी करके बताओ। DM ने एक महीना में रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में उन्होंने दो चीज़ों को माना। पहला उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ ग्राम सभा की जो 15,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है कोका कोला आज भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दूसरा उन्होंने माना कि इस जमीन को गांव मेहदीगंज के सरपंच ने गलत तरीके से उसको ट्रांसफ़र किया और हमको मतलब सरकार को उन्होंने एक गलत जानकारी दिया कि ग्राम सभा को जमीन वापस कोका कोला ने दे दिया। तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया कि हम चाहते थे कि भाई ये दोनों चीज़ मांग रहे हो तो फॉलो अप एक्शन लीजिए, तो एक्शन उन्होंने ये लिया कि मेहदीगंज के सरपंच को सस्पेंड कर दिया कि आपको सस्पेंड किया जाता है, आपने गलत तरीके से अपने अधिकार का दुरुपयोग करके जमीन उसको दिया। दूसरा वो उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये लीगल प्रोसीजर है इसलिए हम 22B का मुकदमा जो है कोका कोला के खिलाफ कर रहे हैं बेदखली के लिए और उस जमीन को जल्दी खाली करवाएंगे। हमारा सवाल यह है कि एक अनपढ़ सरपंच सीधा साधा सरपंच को हो सकता है कुछ पैसे आप दे दिए कोका कोला ने दिया हो, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया, लेकिन जो असली मुद्दा है जमीन का आज तक वो क्यों खाली नहीं हुआ? अगर ग्राम सभा के किसी सार्वजनिक जमीन पर छोटी से टुकड़े पर एक गरीब आदमी जिसके पास रहने को मकान न हो अगर वो जो है कब्जा करता है तो उसको तुरंत आप पुलिस फोर्स के साथ बेदखल कर देते हो, उसको हटा देते हो, लेकिन आज तक जो है कि आप जो है कि उस जमीन को खाली नहीं करा पाए, कहीं ना कहीं जो है कि आपकी कंपनी के साथ साथ गाथ है इसलिए आप जमीन को खाली नहीं कर। इसी से दूसरा जुड़ा हुआ मामला था कि जब कोका कोला ने पार्ले से जमीन खरीदा तो उसमें उन्होंने मार्केट वैल्यूएशन जो दिखाया उस आधार पर जो उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी सरकार को दिया, 2 महीने बाद इनको NOC लेना था उद्योग डिपार्टमेंट से, तो उद्योग डिपार्टमेंट से जो एनओसी के लिए उन्होंने पेपर सबमिट किया उसमें अपना जो है कि पूरे प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू कुछ और दिखाया। उसी के पैरलर हमारे गांव के एक किसान ने जो है एक जनहित याचिका दायर किया। उस जनहित याचिका का 2003 में जो है मार्च 2003 में एक आर्डर आया कि आपने दो अलग अलग जगहों पर जब आप परचेज कर रहे थे उस समय अपना मार्केट वैल्यू कुछ दिखाया और जब आपको एनओसी लेना था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से तो आपने मार्केट वैल्यू जो दिखाया उसके आधार पर आपने 1.5 करोड़ 75 हज़ार रुपये का स्टाम्प कम दिया है, इसलिए आपको आदेश किया जाता है कि जितना आपने स्टाम्प कम दिया है उतना ही पेनाल्टी के रूप में कुल 3.5 करोड़ रुपया आप जो है एक महीने के अंदर कंपनी सरकार को जो है राजस्व जमा करिए। हुआ यह कि जैसे ये आर्डर आया कंपनी भाग गई हाई कोर्ट में उस आर्डर के खिलाफ। हाई कोर्ट ने आर्डर किया 16 जुलाई 2003 को कि आप पहले एक इंस्टॉलमेंट कम से कम पैसा जमा करो, एक इंस्टॉलमेंट जब पैसा जमा करोगे उसके बाद आपके केस पर विचार किया जाएगा। तो 16 जुलाई 2003 को 1.47 करोड़ रुपया जो है पहला इंस्टॉलमेंट इन्होंने कोका कोला ने पेनाल्टी के रूप में जमा किया। उसके बाद 2003 के बाद से आज तक वो कोर्ट में वो भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम सवाल ये खड़ा करते हैं कि जो अगर एक सार्वजनिक ट्यूबवेल है जो सरकारी ट्यूबवेल है उससे अगर किसान जो है पानी लेता है अगर एक साल का उसका जो है कि पानी का पैसा बकाया हो जाता है तो सरकार जो है कि उसको ले जाती है 13 दिन तहसील के लॉकअप में बंद कर देती है और जितने दिन बंद करती उसका भी पैसा वसूलती है कि आप इतना ये भी पैसा दो और जितना जो है आपके यहाँ बकाया है कर का वो पूरा भुगतान करो। और इतनी बड़े अमाउंट को आज तक कोर्ट ने जो है कि आज तक जो है कि सरकार ने इससे वसूली नहीं करी। तो ये दूसरा मामला था। 15 साल होने वाले हैं न तो सरकार ने इनसे ज़मीन खाली करवा पाई न तो सरकार ने 3.5 करोड़ रुपया जो इनको देना था राजस्व ये भी नहीं दे पाई। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला हुआ जब कोका कोला कंपनी आई जब गांव वालों के साथ एग्रीमेंट होना शुरू हुआ तो इन्होंने जो अपना पूरा प्रचार किया एक मल्टीनेशनल कंपनी है 200 से ज़्यादा देशों में हम रोज व्यापार कर रहे हैं तो गांव वालों को बड़ी उम्मीद थी चलिए जो कुछ भी हो हमने ज़मीन दिया भी है तो कोई बात नहीं कम से कम हमें रोज़गार तो मिलेंगे। दूसरी लड़ाई जो है यहाँ के वर्करों का शुरू हुआ। वह लड़ाई यह था कि कोका कोला के अंदर पीक सीजन में करीब 400-500 वर्कर काम करते हैं जिसमें 400-500 वर्कर जो है कि इसमें काम करते हैं जिसमें से सिर्फ 25-30 लोगों को जो है कि ये परमानेंट जॉब देते हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, बाकी सारे वर्कर्स जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। वो कभी कोका कोला उनको अपना वर्कर्स मानता ही नहीं। उन्होंने जो है कि 4 अलग अलग कामों का जो है कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कोई जैसे कि फिनिशिंग के काम में, कोई लोडिंग के काम में, कोई पैकेजिंग के काम में, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है डेली बेसिस पर वर्करों को बुलाते हैं काम कराते हैं। बाद में वर्करों को ये लगा कि नहीं भाई यहाँ तो हमारा बहुत शोषण हो रहा है, एक तो हमें परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है, दूसरा हमें डेली बेसिस पर जो है कि जितना हमको काम जितना काम कर रहे हैं उसके पैरलर हमको मजदूरी भी नहीं मिल रही है, तीसरा हमारे सिक्योरिटी का भी सवाल है तो हम अपना एक यूनियन बनाएंगे और यूनियन के माध्यम से हम डिमांड करेंगे कि कोका कोला भी हमें जो है कि जैसे मैनेजमेंट के वर्करों को मानती है कि ये हमारे परमानेंट वर्कर्स हैं उसी तरीके से हम वर्करों को भी वो माने। उन्होंने एक यूनियन बनाया, यूनियन बना करके ये डिमांड करना शुरू किया। कोका कोला को लगा कि ये तो जो है कि लोकल यूनियन काफ़ी जो वर्कर्स है काफ़ी जो है कि ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और ये अपना यूनियन बना लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी और हमें परमानेंट जॉब इनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे प्लांट के अंदर कोई यूनियन हो ही नहीं सकता है, हम आप हमारे वर्कर हो नहीं, हम आपके हम आपको मानते नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्टर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और उस आपको जो कुछ भी करना है कॉन्ट्रैक्टर से करिए, मुझसे आप कोई डिमांड ना करिए। लेकिन वर्करों का कहना था कि भाई हम तो प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, हम आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम आपसे डायरेक्ट डायलॉग कर रहे हैं। एक सप्ताह तक वो पूरे प्लांट के प्रोडक्शन को बंद कर दिया 2002 में, और वो कहें कि जब तक हमें परमानेंट जॉब आप नहीं देंगे हम जो है काम नहीं करेंगे। कंपनी ने क्या किया कि बाहर के आउटसाइड के बिहार के उड़ीसा के दूसरे स्टेट के वर्करों को बुलाया और दूसरे एंगल से काम कराना शुरू किया, और जो यहाँ वर्कर्स थे इनको जो है कि पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड अपने जो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है उनसे उनकी पिटाई करते हुए आपस में ही काफ़ी लड़ाई कर दी, और जो 13 वर्कर्स थे जो पूरे इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे उनको जो है कि कंपनी से निकाल दिया, और एक हाई कोर्ट से एक आर्डर लाया कि चूंकि ये हमारे प्रोडक्शन में जो है कि व्यवधान डाल रहे हैं, हमारे वर्कर्स नहीं हैं, ये बाहरी लोग हैं, और इन्हें 3 किलोमीटर मतलब प्लांट से 300 मीटर के अंदर न आने दिया जाए, किसी भी कंडीशंस में न आने दिया जाए। हाई कोर्ट की इस आदेश को जो है कि उन्होंने यहाँ लोकल जो पुलिस हैं थाने उनसे मांग कर उनको प्रेशर बना करके उसको फॉलोअप कराना शुरू किया, और वो बेचारे वर्कर्स आज तक अभी भी वो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेज लगे हुए हैं, उनको जेल जाना पड़ा, और आज तक जो है कि वो ये रोक लगा हुआ है उनके ऊपर, जबकि स्थिति यह है कि कुछ वर्करों के तो घर हैं 300 मीटर के अंदर। तो कितनी विचित्र बात है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी उनको घर में भी जाने उनके ज़मीन में जाने से रोक रही है कि आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो वस्तु स्थिति यह है कि वो सारे वर्कर्स आज भी जो है कि कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई यूनियन यहाँ पर नहीं हुआ, किसी को परमानेंट जॉब नहीं मिला, और उसने उसके बाद से कोका कोला ने एक स्ट्रैटेजी किया कि जितने कम लोकल लोग रहेंगे उतना हमारे लिए सेफ है, तो आज के तारीख में 80-90% जो है कि जो वर्कर्स हैं वो बाहर के हैं, यहाँ के लोकल लोगों का जो एक सपना था कि हमें रोज़गार मिलेगा, हमारा विकास होगा, हमें कुछ आमदनी होगा, वो पूरा का पूरा सपना अधूरा रहा, और वो बेचारे उल्टे फंस गए, वो कोर्ट में जो है कि चक्कर लगा रहे। तीसरा मुद्दा हुआ पोल्यूशन का। जब इनका प्रोडक्शन अपना स्टार्ट हुआ तो बड़े पैमाने पर इनका स्लज कचरा और ये पोल्यूट वाटर जो है निकलना शुरू हुआ, तो एक तो जो है कि इन्होंने ये पूरा दुष्प्रचार इस इलाके में ये करना शुरू किया कि जो हमारा स्लज है हम इसको ट्रीटमेंट करके निकालते हैं और ये काफ़ी सेफ है और काफ़ी फर्टिलाइजर है इसमें, तो आप अपने खेतों में जो है कि अपने फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने प्लांट के अंदर जो भी प्लांटेशन का काम किए पूरा का पूरा हम इसी स्लज को इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी जो है कि खेत के लिए यूजफुल है। किसान बेचारे वो सीधे साधे उनको लगा कि अगर फ्री में हमको कोई चीज़ मिल रहा है तो हमको लेना चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है हमारे खेतों में डाल दिए, हमारे खेतों में डाल दिए, सब लोगों ने अपने अपने खेतों में स्लज डालना शुरू किया। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, सालों के बाद जो है कि जो उनकी ज़मीन थी धीरे धीरे जो है कि उसमें सफ़ेद धूल जैसा जो है कि सफ़ेद नमक जैसा पदार्थ आना शुरू हुआ, और जो आलू की फसल देखने में तो हरियाली वाली लग रही है, नीचे कोई फल ही नहीं लग रहा है, गेहूं बहुत हरा भरा दिख रहा है लेकिन उसमें कोई फल ठीक से नहीं आ रहा है, और जो इनका पोल्यूट वाटर था इसको भी उन्होंने कहा कि हम जो है कि इसको ट्रीटमेंट करके फिल्टर करके बाहर निकालते हैं, तो इसको आप खेती के में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और वो जो है कि वैसे ही गांव में जो है कि ऐसे बहाना शुरू किया। तो शुरू में जो है कि किसानों ने जो कि उस पानी को भी यूज करना शुरू किया, तो जब पानी के अंदर गए 2-3 घंटे जब वो रह करके पानी को निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि शरीर में फुंसी आ रही है, फोड़े आ रहे हैं, तो कहीं जो है कि बहुत लगातार वहाँ किसी पेड़ के पास वो पानी इकट्ठा हुआ तो पेड़ भी सूखना शुरू हुआ, तो उनको लगा कि न तो इनका स्लज सेफ है न तो इनका जो है कि पोल्यूट वाटर सेफ है, तो उन्होंने मना किया कि भाई ये हमको नहीं चाहिए, आप इसको जो है कि हमको मत दीजिए। लेकिन कोका कोला ने कहा कि हम कहाँ आसमान में तो बहाएंगे नहीं, हम तो इसको ये करेंगे आपको नहीं लेना है मत लो, लेकिन हम तो ये गिराएंगे। तो जो खेत में गिरा रहे तो सड़क के किनारे स्लज गिराना शुरू किया, जो पानी जो है कि खेतों में डाल रहे तो वैसे ही डालना शुरू किया, और लोग अपने अपने खेतों को मेड़बंदी करके रोकने की कोशिश की कि भाई ये पानी हमारे खेत में ना। और एक पूरा इलाका जो है पूरा जलमग्न हो गया, पूरा का पूरा जल पानी जलमग्न हो गया। तो किसानों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, हमको इसके लिए कुछ करना। तो गांव के किसानों ने ये एक कमेटी बनाया जिसका नाम उन्होंने बताया गांव बचाओ संघर्ष समिति। और इस गांव बचाओ संघर्ष समिति के तहत जो है जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा तो वहीं बैठ गए धरने पर कि भाई ये जब तक पानी निकलेगा नहीं हम धरने से उठेंगे नहीं। हम लोग भी उसी समय इन्वॉल्व हुए, फिर प्रेशर बना कंपनी के ऊपर, प्रेशर बना सरकार के ऊपर, तो एडीएम ने 133 के तहत कार्रवाई किया कि अभी तुरंत ये पानी कोका कोला जो है कि इसको निकालें। और फिर उन्होंने ये टेस्ट करवाया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आई, उन्होंने इनके स्लज का टेस्ट किया और उसमें ये पाया कि इसमें खतरनाक कैडमियम, क्रोमियम और लेड, ये तीन खतरनाक चीज़ें था जो कि मानक से बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पाए गए। तो उन्होंने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा कि आप तुरंत एक्शन लीजिए। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके ऊपर एक्शन लिया कि अभी आप जो है कि बाहर मत करिए, आप जो है कि अपने प्लांट के अंदर इसको ट्रीटमेंट प्लांट बना करके वहाँ पे डंपिंग का काम शुरू करिए। और वहाँ पे फिर बाहर तो स्लज निकलना बंद हो गया लेकिन पानी को वो क्या करें। तो पानी मेहदीगंज के गाँव वालों ने रोक लग रखा था, तो उन्होंने क्या किया कि जो उसके बगल का गाँव है भिखारीपुर, वहाँ के सरपंच को कन्विंस किया कि ये पानी आप अपने गांव में बहाइए। तो सरपंच ने जो है कि उसको कहा कि ठीक है आप हमारे गांव में डाल सकते हैं, तो उस गांव में उन्होंने डालना शुरू किया। लेकिन वहाँ के जो किसान थे भाई, बगल का गांव था, उन्हें पता था कि ये बहुत सेफ नहीं है, नुकसानदायक है, तो उन्होंने एक दिन पूरा आकर के ज़बरदस्ती उसको बंद कर दिया कि नहीं अब हमारे गाँव में भी नहीं बहेगा। अब कोका कोला ने फिर क्या किया कि भाई अब किसानों के खेत में हम पानी नहीं डाल सकते हैं, तो अब क्या किया उसने कि करीब 1.5-2 किलोमीटर जो है कि ये एक अंडरग्राउंड माइनर ले गया, एक पाइप से जो है कि एक नेचुरल माइनर बहता है, उस नेचुरल माइनर में वो अभी जो है कि करंट में जो है कि वो पानी डाल रहा है। ये नेचुरल माइनर जाता कहाँ है, सीधे सीधे आगे जा करके वो गंगा में जाता है। हम लोग ये एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो है कि गंगा को जो है कि राष्ट्रीय नदी घोषित कर रही है कि कोई भी जो है कि इस तरह के पोल्यूट वाटर इसमें न डाला जाए, दूसरे तरफ जो है कि किसानों के अब डायरेक्टली खेत में नहीं जा रहा है तो लोगों को लगता है कि चलिए कम से कम मेरा खेत तो बचा हुआ है। लेकिन अगर ये पानी जो है अगर वो गंगा में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो है कि गंगा को भी प्रदूषित करेगा। तो पानी की स्थिति तो यह हो गया, स्लज की स्थिति यह हुआ कि जब वो प्लांट के अंदर ये हुआ तो उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको एनओसी दे दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब कुछ सेफ है। जबकि उसके बाद पीपल साइंस इंस्टीट्यूट ने जो है कि आकर के टेस्टिंग किया, उन्होंने भी ये जो है कि स्वीकार किया कि उनकी रिपोर्ट में भी साफ तौर पर आया कि यहाँ पर अभी भी जो पोल्यूशन आ रहे हैं, कैडमियम ये सारी चीज़ें आ रही। उसके बाद टेरी ने जो राजेंद्र पचौरी जी की संस्था है उन्होंने भी आकर के यहाँ पे टेस्टिंग किया, उनकी रिपोर्ट में भी ये आया है कि जो है कि यहाँ पे पोल्यूशन हो रहे हैं। उसके बाद भी जो है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसके जो भी अभी स्लज में जो भी केमिकल हैं वो मानक के अंदर में, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो यहाँ का रीजनल डायरेक्टर है अभी वो जेल गए क्योंकि उन्होंने घूस लेते हुए रंगे पकड़े गए, विजिलेंस वालों ने जो है कि उनको एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने उनको घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और फिर उसको अभी जेल में डाले हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो है कि घूस लेकर के इसको एनओसी देता है, अभी भी यहाँ पे पोल्यूशन सारा है। हमने ये भी मांग किया कि भाई ये आप अभी ठीक है अभी प्लान के अंदर ये रख रहे हैं लेकिन उसकी भी कैपेसिटी है, इसके बाद आप कहाँ डाल रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि ये उनको कानपुर का एक एरिया उनको निर्धारित किया गया है, वहाँ अलाट किया गया। अभी यहाँ से वो स्लज उठा करके वहाँ पे डंपिंग करते हैं, लेकिन हम आज तक उनसे ये मांग करें कि उस एरिया का नाम हमको बताया जाए कि कहाँ पे ये एरिया उनको अलाट किया गया, ताकि हम लोग वहाँ की भी टेस्टिंग करें। हम किसी और लेबोरेटरी से रिक्वेस्ट करें कि भाई ये टेस्टिंग आप करके बताएं कि उस एरिया में, लेकिन आज तक उन्होंने उस एरिया का नाम हमको नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का मामला है ये छिपा रहे हैं, उसको गलत तरीके से एनओसी दे रहे हैं। यहाँ पे पोल्यूशन हो रहे हैं, यहाँ के किसानों की ज़मीन, लोगों की सेहत, लोगों की फसल जो है कि को नुकसान हो रहा है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि इसके एक बार ठीक से टेस्टिंग किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर लिखा, टेरी की रिपोर्ट आने के बाद और PSI की रिपोर्ट आने के बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा कि ये रिपोर्ट आई है और ये कह रही है कि पोल्यूशन हो रहा है। तो उनकी फिर से एक टीम आई, उन्होंने टीम आई तो उन्होंने एक फिजिकल वेरिफिकेशन किया और एक जो है कि NOC मांगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC को कह रहे हैं कि उनके मुताबिक यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन जो उन्होंने फिजिकल जो है कि वेरिफिकेशन किया उसमें उन्होंने माना कि हमने जाकर के गांव वालों के साथ बात किया, हमने जाकर के इनका माइनर देखा जो पानी निकाल रहे हैं, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। और किसानों ने भी ये आपत्ति किया है कि अभी भी पोल्यूशन जो है कि यहाँ पे हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि दो चीज़ें, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम उसको नहीं मानते हैं। जब जिसका डायरेक्टर ही जेल में जा रहा हो जो करप्ट हो तो कैसे हम मान सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि वो ठीक ठाक नहीं है, पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं स्टेट को, तो हमारे दायरे में नहीं आता है। तो हमें लगता है कि ये ठीक ठाक से इसका अध्ययन होना चाहिए और अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उस पर तुरंत जो है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी की क्राइसिस को लेकर के है। रोजाना हम लोगों का जो आंकड़ा है 2 से 2.5 लाख लीटर कोका कोला यहाँ पे बनता है पीक सीजन में, और 1 लीटर कोका कोला को बनाने में हम लोगों का जो आंकड़ा है वो 10 लीटर पानी का है। कोका कोला कहती है कि हम उतना पानी नहीं लेते हैं, पहले वो कह रहे थे 7 लीटर लेते थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं तो अब 5 लीटर लेते हैं, अभी कह रहे हैं कि लेटेस्ट हम और नई टेक्नोलॉजी लाए हैं तो 1 लीटर को बनाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4.25 लीटर पानी यूज करते हैं। तो जो भी हो, कोका कोला की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहती है कि हम जो है कि 5 से 5.5 लाख लीटर पर डे पानी यहाँ पे निकालते हैं, पर डे जो है कि यहाँ पे पानी यूज करते हैं। हम लोगों ने जो देखा यहाँ पे किसानों ने ये किया कि धीरे धीरे जब काफ़ी 4 साल 5 साल बीत गया तो पानी का लेवल धीरे धीरे जाना यहाँ पे नीचे शुरू हुआ। किसानों को ये लगा कि अचानक इतने तेज़ी से पानी का लेवल नीचे क्यों जा रहा है, उनको शक यह हुआ कि ज़रूर इसमें कोका कोला का हाथ है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वो यहाँ पे अगर पानी निकाल रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ एरिया पर पड़ेगा ही। और हम लोगों ने, लोक समिति ने एक स्टडी 2006 में कराया तो उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय जो है कि इस इलाके के करीब करीब 60% जो नेचुरल तालाब थे, जो नेचुरल कुएं थे, जो नेचुरल बोरवेल थे, वो सारे काम करना बंद कर दिए थे। और करीब उस समय तक जो है कि 18 फीट जो है कि पानी का लेवल नीचे चला गया था। जब इस बात को लेकर के हम लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया तो कोका कोला वालों ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को क्यों माने, लोक समिति कोई सरकारी लेबोरेटरी या कोई सर्टिफाइड लेबोरेटरी थोड़ो है, किसान कोई वैज्ञानिक आंकड़े थोड़ो पेश कर रहे हैं कि हम उसकी रिपोर्ट को माने, तो हम इसकी रिपोर्ट को नहीं मानते। बाद में हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज किया और ग्राउंड वाटर बोर्ड से जो है कि डाटा निकालना शुरू किया, तो ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो डाटा आया वो बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने इस पूरे ब्लॉक में, ये अराजी लाइन ब्लॉक आता है जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, 14 जगह उन्होंने अपना पीजो मीटर लगाया है जहाँ से वो पानी का डाटा कलेक्शन करते हैं। उस 14 जगहों में से 9 जगह पूरा ड्राई एरिया हो गया था। सिर्फ 5 पीजोमीटर का ही उनका डाटा शो कर रहा था और उस डाटा के मुताबिक पानी का लेवल लगातार लगातार नीचे जा रहा था। हम लोगों ने ये कंप्लेन किया कि अब ये सरकारी रिपोर्ट, चलिए लोक समिति की रिपोर्ट को आप नहीं मानते हैं लेकिन सरकारी रिपोर्ट तो ये को तो आप मानेंगे ना कि पानी का लेवल नीचे। तो इसके पहले, इस रिपोर्ट के आने के पहले जहाँ कोका कोला कहती है कि मेरे आने से तो पानी का लेवल यहाँ ऊपर आ गया क्योंकि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना शुरू किया, लेकिन अगर रिपोर्ट के मुताबिक पानी का लेवल नीचे जा रहा है, हम भी मानते हैं नीचे जा रहा है, लेकिन उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किसान है वो पानी का मिसयूज कर रहे हैं, उनको कोई वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का आइडिया ही नहीं है। दूसरी बात, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से हुआ है इसलिए जो है कि पानी की खपत ज़्यादा हुई है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो यहाँ वाराणसी जिले का जो नेचुरल रेनफॉल था 1040 मिलीमीटर वो हो नहीं रहा है, वो पूरा पिछले 5-7 साल से ये पूरा इलाका ड्राई एरिया है इसलिए जो है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है। लेकिन हम बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेकर के, इसलिए हम बहुत जल्द ही जो है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ले आ रहे हैं और अब जो है कि हम समुदाय के साथ मिलकर के पानी बचाने को लेकर काम करेंगे। और उन्होंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोपोगंडा ले आए और 2009 में इन्होंने जो है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस भी कर दिया कि मेहदीगंज यूनिट जो है हमारा वाटर पॉजिटिव यूनिट है, यानी जितना पानी हम निकालते हैं उतना पानी जमीन के नीचे डाल रहे हैं। और उसके एवज में उन्होंने जो है कि 21 जगहों पर अपना जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है कि अपना सिस्टम लगाया, तो उसको लिखा दिखा करके कि हमारी ये कैपेसिटी है, इतना हम एनुअल पानी निकालते हैं और इतना पानी हम रिचार्ज कर रहे हैं। हमारा सवाल इस संदर्भ में 3 चीज़ें था। पहला ये था कि ये बिल्कुल गलत बात है, अगर ये सच्चाई बात है तो हमारे गांव पर कोका कोला को एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आए आप करें, जितना पानी हम निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो आप उसी पानी को लीजिए ना, आप उसी पानी को कलेक्ट करके बनाइए, ज़मीन के नीचे का पानी क्यों निकाल रहे हैं? हमारे गाँव के को आपकी एक बूंद की पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए। दूसरी बात कि ये एकदम गलत बात है कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप वाटर पॉजिटिव हो। क्यों? 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि आप पानी 3 किलोमीटर के प्लांट के आसपास का निकाल रहे हो, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर कर रहे हैं तो मेरे गांव को मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह था कि जहाँ जहाँ इनकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग था हम लोगों ने फिजिकल उसका वेरीफाइड किया, कहीं का भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं था। जो चैम्बर थे वो पूरा चैम्बर जो है कि कूड़ा करकट से भरा हुआ है, आप चाहें तो अभी भी जा करके देख सकते हैं। जो इनके पाइपलाइन थे सब टूटा फूटी अवस्था में थे, कोई जो है कि पानी एक बूंद भी उस चैम्बर के अंदर नहीं जा रहा था। दूसरी बात हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि ये पूरा का पूरा इलाका, जब आप मान रहे हो कि 5 साल से यहाँ नेचुरल रेनफॉल हुआ ही नहीं तो आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया कहाँ से? आसमान से पानी ले आया, कहाँ से ले आ करके पानी ये किए? तो उसके बुनियाद में जो है कि आप ये कह रहे हैं कि हम वाटर पॉजिटिव हो गए, तो बिल्कुल गांव वालों को, मीडिया को या आम जन लोगों को जो है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ हम लोगों को बाद में समझ में आया कि अभी तक ये कह रहे थे कि हम गांव वालों को कोई एहसान कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम आपका पानी आपके लिए बचा रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की गाइडलाइन को आप देखें तो उस गाइडलाइन में जो है कि ये है कि जो कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं पानी का अंडर ग्राउंड वाटर को, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही है। और ख़ास तौर से जो एरिया क्रिटिकल जोन है उस एरिया में तो वो उनको जितना पानी निकाल रहे उसका दुगना उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, यानी जितना पानी आप डालेंगे उसका सिर्फ 50% आप पानी जो है कि यूज कर सकते हैं कमर्शियल यूज के लिए। तो ये जो कह रहे थे कि हम मतलब कि अपना सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं, ये गलत है। पहली बात ये कहना ही जो है कि एकदम झूठ बात है, क्योंकि इनको ये करना कंपलसरी था, इनको करना ही है। और दूसरी बात, जो करना था जितना वो कर नहीं रहे हैं, ये हम लोगों का है। अब जो करेंट स्टेटस यह है, पानी का लेवल लगातार नीचे गया। ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इस पूरे इलाके केस कर दिया कि क्रिटिकल जोन में कोई सरकारी हैंडपंप बोरवेल नहीं लगाए जा सकते, अब पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम करेंगे। ऐसे कंडीशंस में कोका कोला जो यहाँ पे वर्तमान में बिजनेस कर रही है, जितना पानी निकाल रही है उसका 5 गुना ज़्यादा, मतलब अभी ये 50,000 क्यूबिक मीटर एनुअल पानी ये कह रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं, उसका हमें 5 गुना ज़्यादा, यानी 2,50,000 क्यूबिक मीटर पानी निकालने की एनओसी मांग रही है। कहाँ से? 1,000 फीट की गहराई से। हम सवाल यह कर रहे हैं कि अभी तक पहला जो लेयर था, जो कि 100 फीट के अंदर का पानी जो था, किसान, हर एक किसान के लिए वो आसान था, वो निकाल सकता था पानी। पानी का लेवल नीचे गया, अब सारे के सारे किसान सेकेंड लेयर में नहीं जा पाए, जो कि 200 से 300 के बीच में था, क्योंकि उसके लिए जो है कि बड़े मशीन की ज़रूरत थी, ज़्यादा ताकतवर समरसेबल पंप की ज़रूरत थी। तो जो रिच किसान थे वो ज़मीन के अंदर तो चले गए, वहाँ से पानी निकाल रहे हैं। जब 1,000 फीट के नीचे से पानी निकालेगा कोका कोला और सेकेंड लेयर का भी पानी ख़त्म होगा, तो किसानों की बस की बात नहीं है कि वो इतने गहराई से ये करें। और तीसरा जो हम इसमें कह रहे हैं कि ये उसकी बपौती नहीं है, सरकार की बपौती नहीं है, जो ग्राउंड वाटर का सरकार एक ट्रस्टी के रूप में उसका काम, उसका मालिका वो मालिक नहीं हो सकता। इस ज़मीन पर ये पानी बचाया है हमारे पुरखों ने, हमारे गाँव के लोगों ने। सरकार का काम है उसकी रक्षा करने का, न कि उसको मालिकाना हक करके हम किसी को भी दे दें। तो सरकार दे या न दे, हम किसी भी कीमत पर गांव के लोग 1,000 फीट से, जो कि सदियों, क्योंकि एक दिन के में वो इतना पानी संचित नहीं हुआ है, वो पुरखों दर पुरखों, पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है कि हजारों वर्ष का कलेक्ट किया हुआ पानी है, उस पानी को जो है कि हम कमर्शियल यूज के लिए नहीं दे सकते। हो सकता है कि सेकेंड लेयर का भी पानी ख़त्म हो जाए, तो हमारे किसान के लिए, हमारे गांव वालों के लिए अगर वो जो है कि रिजर्व पानी है, तो हम उसको रिजर्व रखेंगे। हम विपरीत परिस्थितियों में वो पानी निकालने का ये करेंगे, न कि हम उसके कमर्शियल यूज करने के लिए करेंगे। तो करेंट स्टेटस यह है कि पानी का लेवल यहाँ पे इतना नीचे गया है, जिसके कारण ये पूरा एरिया जो 2005 तक सेफ जोन था, सिर्फ 4 साल में ये क्रिटिकल जोन में आ गया। अगले 4 साल में क्या कंडीशंस होगा वो भगवान जाने। और इतने तेजी से नीचे पानी जा रहा हो, और ऐसे समय में जितना पानी निकाला उसका 5 गुना ज़्यादा पानी निकालने का परमिशन चाह रहा हो, ये अपने आप में एनओसी देना बेवकूफ़ी होगा, बेमानी होगा, गांव के मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। तो हम लोग समुदाय के तरफ से हम यही मांग कर रहे हैं सरकार के साथ कि पहला किसी भी कंडीशंस में उसको एनओसी न दिया जाए, दूसरी बात कि जो वर्तमान जो पानी ले रहा है उसको भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये जिस रफ्तार से पानी का लेवल नीचे गया है, हमारा ग्राउंड वाटर पॉलिसी भी कर ये कमिटमेंट करता है कि पहले वो पीने के पानी के लिए होना चाहिए, फिर एग्रीकल्चर के लिए जाएगा, फिर इंडस्ट्री को जाएगा। तो जहाँ पीने को पानी नहीं है लोगों को, हैंडपम्प जब आप दे रहे हैं, हैंडपम्प लग नहीं रहे हैं, वैसे समय में जो है कि आप इंडस्ट्री को इतने बड़ा जो है कि पानी निकालने का परमिशंस नहीं दे सकते। तो हम इसका बहिष्कार करते हैं, और हम जब तक ये एनओसी कैंसिल नहीं होगा और जब तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा पानी निकालने का, तब तक ये हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी।